महाबंध पुस्तक चौथी लेक्चर नंबर 16। ॐ नमः सिद्धेभ्य, ॐ नमः सिद्धेभ्य, ॐ नमः सिद्धेभ्य, ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वच्छायां, नमो लोये सौवसां। भूतबलिप्रणीतं तं बन्धतत्त्वप्रकाशकं महाधवलविख्यातं महाबंधम नमाम्यहम्। आचार्य श्री भूतबलि भट्टारक प्रणीत यह महाबंध नाम का सिद्धांत शास्त्र है, जो षटखंडागम का 6 नंबर का खंड है। इसमें तृतीय अनुभाग बंध अधिकार चल रहा है और उसमें चौथी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 62 पर हम आ गए हैं। पहले हमने उत्कृष्ट के अंतर की बात देखी थी, अब जघन्य के अंतर की प्ररूपना चल रही है। अब यहाँ हमको स्वामित्व को ख्याल में रखकर उसका अंतर लाना है, क्योंकि 4 घाती कर्मों का जघन्य तो क्षपक में होता है, उसका तो अंतरकाल नहीं होता, यानी वो की अपेक्षा, और अजघन्य का अंतर 11वें गुणस्थान की अपेक्षा बन जाता है एक समय से अंतर्मूल तक। ये ओग में हमने देखा था 57 पेज पर ओग में जो जघन्य शुरू हुआ था ना, वहाँ क्या देखा, 4 घाती का जघन्य का अंतर नहीं, और जघन्य का एक समय से अंतर में 11वें की अपेक्षा। वेदनीय नाम कर्म का जघन्य कहाँ होता है, तो मध्यम परिणाम में, उसका जघन्य अंतर एक समय उत्कृष्ट असंख्यात लोग, और अजघन्य का जघन्य अंतर एक समय उत्कृष्ट अंतमूर्त, वो भी 11वें की अपेक्षा से। आयु कर्म के जघन्य का एक समय से अधिक असंख्यात लोग, और अजघन्य का एक समय से साधिक 33 अगर, यानी 2 भवों में आयु बांधी, पहले भव में 1/3 पूर्व कोटि पहले, और अंतिम भव यानी दूसरे 33 अगर वाले में लास्ट में। गोत्र कर्म का कहाँ होता है, तो 7वें नरक में सम्यक्त के समय, तो उसका जघन्य का अंतर अंतर्मूर्त, यानी 2 बार सम्यक्त प्राप्त किया, सम्यक्त प्राप्त किया 7वें नरक में, सम्यक्त में अंतर्मूर्त रहा, फिर मिथ्यात्व में आया, मिथ्यात्व में अंतर्मूर्त में फिर सम्यक्त प्राप्त किया, तो अंतर्मूर्त का अंतर हुआ, और उत्कृष्ट अंतर अर्धपुद्गल हो जाता है। अजघन्य में भी एक समय से अंतर्मूर्त अंतर होता है, वो भी 11वें की अपेक्षा घटित होता है। ये हमने ओघ में देखा था, उसके बाद नारकियों में, तिर्यंचों में, 4 गतियों में देखा था, फिर एकेंद्रीय, द्विन्द्रिय, तीनेंद्रिय, चतुरेंद्रिय में भी देख लिया। अभी हमको यहाँ 62 पेज पर पंचेंद्रियों की बात हम पढ़ने जा रहे हैं, 62 नंबर का पेज, अंतिम पैराग्राफ। देखो वहाँ पढ़ते हैं, पंचेंद्रिय और पंचेंद्रिय पर्याप्त जीवों में, यहाँ पर भी क्षपक तो है ही है, 4 घाती कर्मों के जघन्य और अजघन्य अनुभाग बंध का अंतरकाल ओघ के समान है। हमने क्या देखा था, जघन्य का अंतर नहीं है, अजघन्य का एक समय से अंतर्मूल 11वें की अपेक्षा। वेदनीय आयु और नाम कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है, और उत्कृष्ट अंतर काय स्थिति प्रमाण है। ओग में हमने असंख्यात लोग देखा था, यहाँ काय स्थिति पंचेंद्रिय की, हाँ यानी 1000 सागर प्लस पूर्व कोटि पृथक, और पंचेंद्रिय पर्याप्त में 100 सागर। अजघन्य अनुभाग बंध का अंतर का लोक के समान है, एक समय से अंतर मूर्त 11वें की अपेक्षा। चार समय तो जघन्य का काल है, ओके समान यानी क्या होगा, एक समय से अंतर्मुख, चार समय लिखा होगा तो अंतर्मुख करना, उसका काल चार समय था जगन्य का, और अजगन्य का अंतर ग्यारहवीं की अपेक्षा अंतर्मुख तक हो सकता है मैक्सिमम। गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर अंतर्मुख, पंचेंद्रियों में भी वो स्वामी तो वो नारकी ही है, तो हमने जैसे ओग में देखा था, यानी जघन्य के लिए वैसा ही है, और उत्कृष्ट अंतर के लिए काय स्थिति लेना, ओग में हमने अर्ध पुजगल देखा था, यहाँ काय स्थिति के ख्याल में, काय स्थिति यानी पंचेंद्रिय का जो भव है, पहला भव यानी दूसरा भव कहना पड़ेगा हमको, क्योंकि डायरेक्ट तो अन्य इंद्रियों में से तो नारकी में जाएगा नहीं, तो पहले पंचेंद्रिय था मनुष्य तीर्यांचा, वो नरक में गया, सातवें नरक में उसने सम्यक तो प्राप्त किया, वहाँ से उसका जगन्य का अंतर चालू हो गया, और फिर कुछ कम अर्ध पुद्गल परावर्तन में फिर प्राप्ति की, अर्ध पुद्गल नहीं यहाँ तो काय स्थिति लेना, पंचेंद्रिय के अंतिम भाव में, यानी वो हजार सागर साधिक हजार सागर काय स्थिति बताए ना गोत्र कर्म की, और अजगन्य अनुभाग बंध का अंतरकाल ओग के समान है, यहाँ पर भी एक समय से अंतर्मूल ग्यारहवें गुणस्थान की अपेक्षा लेना पड़ेगा। इसी प्रकार त्रस त्रस पर्याप्त और चक्षुदर्शनी जीवों के जानना चाहिए, यानी उसकी अपनी अपनी काय स्थिति एक कथन समान होगा, काय स्थिति जुदी जुदी है परंतु सबकी अपनी अपनी काय स्थिति बताना है, चक्षुदर्शनी कहो या त्रस पर्याप्त कहो, काय स्थिति एक जैसी है दोनों की। विशेषार्थ 63 पेज पर ओग से चार घाती कर्मों के जघन्य और अजघन्य अनुभाग बंध का अंतरकाल पंचेंद्रिय द्विक की मुख्यता से ही उपलब्ध होता है, इसलिए यहाँ यह अंतरकाल ओग के समान कहा है, यानी जघन्य का अंतर नहीं और अजघन्य का एक समय से अंतर्मोत, किंतु वेदनीय आयु नाम और गोत्र कर्म के विषय में सर्वथा यह बात नहीं है, इसलिए इनका विचार स्वतंत्र रूप से किया है, उसमें भी यहाँ जिनकी जो काय स्थिति है तत्प्रमाण इन कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का उत्कृष्ट अंतरकाल बन जाता है। ओग में उसको असंख्यात लोग कहना था और यहाँ तो अपनी अपनी काय स्थिति लेना है। त्रस त्रस पर्याप्त और चक्षुदर्शनी जीवों में भी चार घाती कर्मों का ओग के समान और शेष का अपनी अपनी काय स्थिति के अनुसार यह अंतरकाल बन जाता है, इसलिए वह इन जीवों के समान कहा। अब ये तो इंद्रिय मार्गणा हो गई हमारी, अब काय मार्गणा में देखेंगे, पृथ्वी कायिक और जलकायिक जीवों में चार घाती कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय उत्कृष्ट अंतर असंख्यात लोक प्रमाणे, यही उनकी काय स्थिति भी है, और ऐसे भी करने वाले तो बादर है, और वो सूक्ष्म में गए तो असंख्यात लोक तक तो अजगन्य ही किया, वो भी ले सकते हम अजगन्य, नहीं नहीं वो एक इंद्रिय ही है ना, पृथ्वी का एक जल का एक है, और उसमें क्या लेना है, उसको जघन्य करने वाला बादर है, बादर पर्याप्त जीव है, और उसने काय स्थिति के अंत में जाके फिर जघन्य किया, बीच में किया ही नहीं, असंख्यात लोक प्रमाण बताया कि वो पृथ्वी का एक काय स्थिति असंख्यात लोक है।
अच्छा 22,000 वर्ष एक भव की
भवस्थिति हुई
और पृथ्वी का एक असंख्यात लोक
अकेले सूक्ष्म पृथ्वी का एक कभी काल असंख्यात लोक का है, अकेले सूक्ष्म पृथ्वी का एक और बादर और सूक्ष्म मिलकर भी और बड़ा असंख्यात लोक। हाँ,
जो पृथ्वी का एक के बारे में हम कर बता रहे हैं असंख्यात लोग, वैसे जल का
एक के लिए हाँ। और जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर दो समय है, क्योंकि लगातार जघन्य दो समय तक हो सकता है जो अजघन्य का अंतर कहलाएगा। अदरवाइज तो ये प्रकृति तो बनती रहेगी, चार भाती कर्म तो हर समय बनते हैं। जब वो जघन्य नहीं बन रहा है तो अजघन्य ही बन रहा है, जब जघन्य बन रहा है तब अजघन्य नहीं बन रहा है तो उसका अंतर हो जाएगा। अजघन्य अनुभाग बंद का पता है ना, एक समय से दो समय। बादर पृथ्वी कायिक जीवों में, अभी उसकी अपनी काय स्थिति कितनी है, अकेले बादर को लिया तो कहते कर्म स्थिति प्रमाण है, क्योंकि कायिकों में एक एक कायिक वाला, जो एक इंद्रिय का एक एक काय वाला अलग लेना तो उसकी काय बादरों की कितनी होती है काय स्थिति, तो कर्म स्थिति प्रमाण उनकी काय स्थिति है। काय स्थिति समझते हैं लगातार, हाँ उसी पर्याय में जन्म मरण करने का काल। कर्म स्थिति का अंतर है 70 कोड़ा कोड़ी साल। बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त जीवों में संख्या 1000 वर्ष है, यानी उसने पहले भव में जघन्य किया, अंतिम भव में जघन्य किया, तो जघन्य का अंतर हो जाता है। और सर्वत्र अजघन्य का अंतर तो एक समय या दो समय होगा। इसी प्रकार वेदनीय नाम और गोत्र कर्म का जानना चाहिए, यानी काय स्थिति के लिए वही बात है, इतनी विशेषता है कि इनके अजघन्य अनुभाग का बंध का अंतर काल अपर्याप्त कौन के समान है। अपर्याप्तकों के समान है, एक समय से चार समय जो जघन्य का काल है वो अजघन्य का अंतर होगा। निकालो अपर्याप्त, हमने देखा था ना बंचनी तीरियंच अपर्याप्तकों में सब अपर्याप्तों का ऐसा ही है कहा था उन्होंने। पेज नंबर 60 पर बीच वाला पैराग्राफ है ना 145 नंबर का, वहाँ तीसरी लाइन में वेदनीय नाम गोत्र की बात शुरू हुई थी, मिला आपको? उसके जघन्य का अंतर एक समय उत्कृष्ट अंतर्मूल, वो हमको तीर्यंच अपर्याप्त नहीं दिखना है, जघन्य का अजघन्य का लेना है, अजघन्य का जघन्य एक समय उत्कृष्ट चार समय, वही बात यहाँ लेनी है। अजघन्य का काल अपर्याप्त नहीं, नहीं ये वहाँ यहाँ नहीं लेना, जघन्य का अंतर्मूर्त यहाँ नहीं होगा, उसकी अपनी काय स्थिति लेना है। अजघन्य का अंतर कितना, एक से चार समय। मैंने अपर्याप्तों की मार्गणा बताई थी, निकालो 145 नंबर का पॉइंट यानी नया पैराग्राफ, पेज नंबर 60 पर देखना है आपको। तो काय स्थिति वो जगने के लिए नहीं, वो इसके समान लेना। फिर से सुनो, आप नंबर 60 पेज निकालिए, नया पैराग्राफ, पंचेंद्रिय अपर्याप्त, तीसरी लाइन, वेदिनी नाम और गोत्र कर्म के। जघन्य अनुभाग की बात यहाँ छोड़ो, उसके समान नहीं है, और जघन्य के लिए समानता, क्योंकि पंचेंद्रिय तीर्यंच अपर्याप्त की काय स्थिति अंतर्मूर्ति, और हम अभी कौन सी मार्गणा देख रहे हैं, हम यहाँ तो हाँ ये पृथ्वी का एक है, उसके बादर है, उसके पर्याप्त है, तो अपनी अपनी काय स्थिति, जघन्य का अंतर काय स्थिति प्रमाण, और अजघन्य का अंतर वो अपर्याप्त के समान। वहाँ क्यों लिखा अपर्याप्त के समान, क्योंकि चार घाती के लिए अजघन्य का अंतर दो समय था उत्कृष्ट, और यहाँ उत्कृष्ट अंतर चार समय होगा। तो हम पेज नंबर अपना 63 चल रहा है, हमारी मार्गणा का काय मार्गणा की बात चल रही थी, पृथ्वी का एक जल का एक में देखो यहाँ लिखा ना वेदिनी नाम गोत्र का ऐसा ही है, ऐसा ही नहीं, वेदिनी नाम कर्म गोत्र के जघन्य का एक समय से काय स्थिति होगा। अभी देखो बादर पृथ्वी काय की इन जनरल है तो असंख्यात लोग, बादर पृथ्वी काय के लेंगे तो कर्म स्थिति, और बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त लेंगे तो संख्या 1000 वर्ष, तीन ऑप्शन है। पेज नंबर 63 पर बात कर, पृथ्वी कायकों की बात अभी हमने पढ़ना चालू किया था, पृथ्वी कायिक भी और जल कायिक भी, और उनमें पहले हमने चार घाती का देखा, उनका जगन अनुभाग कब होता है, तो उनकी विशुद्धि में होता है बादल जीवों के। तो एक समय के अंतर से जगन्य दोबारा कर सकता है जी। उत्कृष्ट अंतर असंख्यात लोक है, उसकी काय स्थिति इतनी है, काय स्थिति है या सूक्ष्म में गया ऐसा लेंगे।
हाँ, सूक्ष्म में गया।
हाँ, परंतु इसकी अपनी काय स्थिति भी असंख्यात लोक ही है। सूक्ष्म में जाके आए तो भी
ले सकते हैं कि पहले जगन्य किया,
काय स्थिति के अंत में। हाँ, केवल एक ही निर्गुण की काय स्थिति जहाँ अनंत काल है, वहाँ असंख्यात लोक के बाद वो जगन्य करता ही करता है, अन्यत्र सर्वत्र काय स्थिति बता देना।
तो इसमें ऐसा नहीं लेना कि वो अन्य पर्याय में चला गया, सूक्ष्म में चला गया,
वो तो पृथ्वी का एक इन जनरल बात है। हाँ, सूक्ष्म में गया
क्योंकि बादल
बादल जघन्य करेंगे। सूक्ष्म में गया और बादल में आने पर भी उसने जघन्य नहीं किया, तो टोटल काल भी उसका असंख्यात लोक होता है। अब दूसरी बात, क्या बादल पृथ्वी का एक जीव है, यानी सूक्ष्म को छोड़ दिया, अब ये तो असंख्यात लोग नहीं कह सकते। अकेले बादर पृथ्वी का एक में रहने का काल कितना है, तो कर्म स्थिति, यानी 70 कोड़ा कोड़ी सागर। नहीं समझ,
तो फिर ये पृथ्वी का एक जल का एक असंख्यात लोग, तो उसकी प्रकृति क्या है?
चार घाती कर्म का जघन्य अनुभाग बंद कौन करेगा? पृथ्वी का एकों में बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त करेगा। एक बार उसने जघन्य किया, अब पृथ्वी का एक इन जनरल लेते हैं, पृथ्वी का एक इन जनरल में रहने का काल कितना है, उसकी काय स्थिति कितनी है, तो असंख्यात लोक है। सूक्ष्म बादर की मिलकी भी असंख्यात लोक, बड़ा असंख्यात लोक है। तो उसने पहले भव में बादर बनकर वहाँ जघन्य किया, फिर सूक्ष्म बादर करते 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 अंतिम भव में फिर उसने जघन्य किया, तो असंख्यात लोक का अंतर हुआ। अब दूसरी बात, दूसरा कौन सा है उसका प्रकार? बादर पृथ्वी का एक जीव, सूक्ष्म को छोड़ दिया, अकेले बादर पृथ्वी का एक में रहने का लगातार काल कितना है? कर्म स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर। तो पहले भव में जगन्य किया, अंतिम भव में जगन्य किया, तो जगन्य का उत्कृष्ट अंतर कुछ कम काय स्थिति हो गया, उसको काय स्थिति कहेंगे तो भी चलेगा। अब तीसरा प्रकार कौन सा है? बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त, लगातार बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त में रहेगा तो संख्यात हजार वर्षों तक ही रह सकता है। तो उसने पहले भव में जगन्य किया, अंतिम भव में जगन्य किया, तो जगन्य का उत्कृष्ट अंतर लगाने के लिए काय स्थिति को देखना है हमको। जल का एक में भी ऐसा ही हुआ, किसके लिए? चार घाती के लिए। और जगन्य का अंतर कब होगा? जब वो जगन्य करेगा तब। तो मिनिमम एक समय, मैक्सिमम दो समय। यहाँ तक समझ में? और वेदनीय नाम गोत्र के लिए, तो उसके लिए मध्यम परिणाम में जगन्य होता है, तो वो भी पहले भव में जगन्य किया, अंतिम भव में जगन्य किया, काय स्थिति प्रमाण उत्कृष्ट अंतर उसका भी होगा। और जगन्य के अंतर के लिए क्या है? हाँ,
मध्यम परिणाम में चार समय,
चार जगन्य का लगातार काल चार समय है, तो अजगन्य का अंतर भी अधिक से अधिक चार समय। ये यहाँ के ओग में तो हमको 11वां गुणस्थान मिलता है, यहाँ तो वो बात है।
सर्वा विशुद्धि और सर्वा संकेत में एक से
दो समय तक ही रहता है, बिल्कुल। हाँ,
मध्यम
परिणाम में 104 समय। तो ये हो गई तीनों की बात, और उसमें वेदनी नाम गोत्र का भी बता दिया। यहाँ तक अपनी बात हो गई। अब छठी लाइन पर आ गए। इसी प्रकार आयु कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का अंतरकाल है, यानी आयु तो बांध ही उसने हर भाव में, परंतु आयु का जघन्य बंध नहीं किया, तो जघन्य बंध पहले भाव में किया, अंतिम भाव में किया, तो इसलिए उसका भी उत्कृष्ट अंतर जो असंख्यात लोक या कर्म स्थिति या वो हमने जो संख्यात हजार वर्ष, उसमें भी घटित हो जाएगा। परंतु अजगण्य बंध तो हर समय हर बंध हर भव में करता है, तो यह लगातार दो भव ले सकते हैं। हाँ, देखो क्या कहते हैं, इसी प्रकार आयु कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का अंतर है, यानी वो काय स्थिति प्रमाण लेना, जघन्य का अंतर कितना है तो काय स्थिति प्रमाण। हाँ देखो, पृथ्वी का एक इन जनरल या जल का एक इन जनरल असंख्यात लोग, बादर पृथ्वी का एक या बादर जल का एक में, हाँ, और पर्याप्तों में संख्यात हजार वर्ष, ऐसा ही होगा। पर अजगण्य अनुभाग बंध यानी आयु का बंध तो हर भाव में होगा ही होगा, तो लगातार दो ही भाव ले सकते हम, अजगण सॉरी अजगण्य यहाँ जगन्य लिखा है वह अजगन्य होना चाहिए, दो बार जगन्य ही लिखा है, क्या क्या समय है अज पगदी अंदरम कादवम ऊपर लिखा है। अजगन्य के लिए हमेशा प्रकृति बंध का अंतर देखते हैं, यानी वो प्रकृति ही नहीं बंधी, ऐसा कितने काल तक हो सकता है, ये मिला समझ में कहा जगन्य का अजगन्य करना। एक दो तीन चार पाँच छः सातवीं लाइन लास्ट टाइम ये पकड़ में नहीं आई, देखो आयु कर्म की बात पढ़ रही हूँ मैं, ऊपर से छठी लाइन में आयु कर्म पढ़ा, इसी प्रकार आयु कर्म के जगन्य अनुभाग बंध का अंतरकाल है वो तो काय स्थिति प्रमाण देखा, उसके बाद का वाक्य ना इसके फिर जगन्य लिखा है वो अजगन्य होना चाहिए, इसके अजगन्य अनुभाग बंध का अंतरकाल प्रकृति बंध के अंतरकाल के समान करना चाहिए। अब तेजल आप बताइए पृथ्वी कायिक में अंतर कितना होगा और जल कायिक में कितना होगा?
पृथ्वी कायिक में सादिक 22,000।
हाँ सादिक 22,000 क्यों? पहले भोग का बंथड़ और दूसरे भोग का अंत में जाके बांध किया, तो सादिक 22,000 में उसका बंथड़ मिला देना, और जल कायिक में
10,000 सादिक
हाँ जलकाइक में, जलकाइक में 10,000 था, 7,000 था वायु का पृथ्वी सॉरी वनस्पति में जो 10,000 वर्ष था, इसमें 7,000 वर्ष होगा। जलकाइक 7,000 वर्ष था, पेज नंबर 48 पर हमने लिख के रखा था और वहां पर लिखा भी है। मैंने पृथ्वी कायिक में
22,000
वर्ष है, जल कायिक में 7,000 वर्ष है, उसकी एक भव
दो पूरा
एक भव प्लस साधिक में उसका मंथर हो गया। उसका एक भाव की स्थिति मालूम है तो हमको उसको डिराइव कर सकते हैं।
ये जो आपने लिखवाया
हाँ
125 नंबर का पॉइंट जो है
हाँ
इसमें ऊपर से तीन चार पाँच छठी लाइन में आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभव का जगन्य अंतर बताया
एक समय,
तो उसमें साधिक 7,000 वर्ष पृथ्वी का एक लिखा है।
हाँ वहाँ उत्कृष्ट का अंतर था।
नहीं नहीं अभी आपने जो बताया पृथ्वी का एक जो है वो 22
देखो वहाँ साधिक 7,000 वर्ष लिखा,
22,000 वर्ष उसकी आयु है
वहाँ। देखो देखो
हम आपसे जनरल पूछ रहे हैं पृथ्वी का एक अधिक से अधिक 22
कहाँ लिख रहे, कौन से पेज पर
एडिशनल पूछ रहे?
नहीं कौन से पेज पर लिख रहे?
48 आप बता रहे हैं,
48 पृथ्वी का एक का एक भव 22,000 वर्ष का
हाँ।
और उत्कृष्ट के लिए उसका क्योंकि उत्कृष्ट आयु वो मनुष्य आयु के बांधेगा इसलिए उसके आबाधा का काल वहाँ साधिक 7,000 वर्ष वहाँ लिखा था, परंतु उसकी अपनी आयु 22,000 वर्ष है, जल का एक की 7,000 वर्ष है,
वनस्पति की
10,000 वर्ष है, उसमें उत्कृष्ट में वो मनुष्य आयु बांध रहा इसलिए उसको मंथर का शादी अग्नि कायिक के 3 दिन रात और वायु कायिक का 3,000 वर्ष। यहाँ भी प्रकृति बंध के अंतर के लिए ऐसा ही ना वहाँ ऐसा ही लिखा था हमने प्रकृति बंध के अंतर के समान। तो हमने वहाँ लिखवाया था साधिक दो 22,000 वर्ष। साधिक 7,000 वर्ष यानी एक भव प्लस वन थर्ड भव।
ये 7,000 वर्ष जो लिखा है
हाँ।
वो किसके लिए है? आयु कर्म का।
आप वहाँ बढ़ रहे हैं, वो उत्कृष्ट अनुभव के लिए था। उत्कृष्ट अनुभव एक बार बांधा तो उत्कृष्ट अनुभव कौन से आयु का बंधेगा? तो मनुष्य आयु का बंधेगा। इसलिए एक भव में दो ही बार मनुष्य ही बांधेगा, पृथ्वी का एक हो या जल का एक हो, पहले अपकर्ष में अंतिम अपकर्ष में। तो वो वन थर्ड जो है 22,000 का वन थर्ड वो साधिक 7,000 वर्ष हो जाता है। वहाँ उत्कृष्ट की बात
है।
यहाँ जगन्य में क्या तीरंज है, ने तीरंज आयु बांध दिया इसमें वही है। हाँ 22 का वंशर। अब यहाँ प्रकृति बंध का अंतर कितना है? साधिक 22,000, क्योंकि दो भावों में लेना है। हाँ यानी वन एंड वन थर्ड भाव लेना है। अभी अपना अपना भाव काउंट करो। इसलिए प्रकृति बंध का अंतर हम पेज नंबर 63 पर आते हैं। 63 निकालना पेज, अपना पेज 63 चल रहा है। आयु कर्म के अजघन्य अ हमने डाला था, अजघन्य अनुभाग बंध का अंतरकाल प्रकृति बंध के अंतरकाल के समय, यानी आयु बंध ही नहीं कितने काल तक, ये इसका अंतर है। तो अजघन्य का जघन्य अंतर तो एक समय होता ही होता है, बीच में उसने बीच में जघन्य किया। हाँ अब कहते कि ये हो गया प्रकृति बंध के अंतर के समान। वो प्रकृति बंध का अंतर कितना होगा? साधिक 22,000 और साधिक 7,000, क्योंकि यहाँ दो ही कायिक वाले एट ए टाइम लिए हैं। अग्नि कायिक वायु कायिक के बाद छोड़ दिए, वो क्यों छोड़ी वो देखेंगे हम। इसी प्रकार अग्नि कायिक और वायु कायिक जीवों के भी जानना चाहिए, क्योंकि चार घाती के लिए तो कोई प्रश्न नहीं है। इतनी विशेषता है कि इनमें गोत्र कर्म का भंग ज्ञानावरण के समान है। उसका अर्थ क्या है? देखो ऊपर के जीवों में पृथ्वी कायिक और जल कायिक में गोत्र का जघन्य कितने समय तक होता है? तो एक समय से चार समय तक। और यहाँ अग्नि कायिक वायु कायिक में गोत्र का जघन्य कितने समय तक होगा? कौन करेगा पहले ये नक्की करो। अग्नि कायिक वायु कायिक लिए ना सर्व विशुद्ध दो ही समय तक हो सकता है। अन्यत्र क्या था? क्योंकि ये कितना भी विशुद्ध क्यों ना हो, नीच गोत्र ही बांध रहा है, और नीच गोत्र बांध रहा है और विशुद्ध हो रहा है तो और जघन्य बांध रहा है। इसलिए इसका जघन्य का काल दो समय तक है उत्कृष्ट, जो अजघन्य का अंतर होगा। ज्ञानावरण के समान क्या समानता है? उसका अंतर एक या दो समय हो। यानी अजघन्य का अंतर एक या दो समय, वहां तो अपर्याप्त भी समान बताया था, वहां पर एक से चार समय, यहाँ वैसा नहीं लेना। यहाँ तक समझ में? अब पृथ्वी कायिक हो गया, जल कायिक हो गया और ये दो हो, उसमें भी अग्नि कायिक में जो आयु की बात बताना है तो अजघन्य जघन्य के लिए उसकी काय स्थिति कितनी है? वो भव स्थिति है असंख्या प्रोक सबके लिए, वो तीन दिन रात भव स्थिति है। वो किसमें लेना? आयु के अजघन्य के लिए साधिक तीन दिन रात, यानी चार दिन रात कर सकते हैं उसको। ख्याल में आती है बात? काय स्थिति सबके असंख्यात लोग, भव स्थिति 7,000 वर्ष। वैसे वायु का एक भव कितना है? 3,000 वर्ष। तो उसके आयु के अजगण्य के लिए साधिक 3,000 वर्ष कहेंगे, और अग्नि के लिए वो तो साधिक 3 दिन रात कहेंगे। अभी यहाँ तो हो गया ना। अब वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर और निगोद जीवों में पृथ्वी का एक जीवों के समान भंग है। अलग अलग किया ना, प्रत्येक शरीर वाले लिया, उसमें पर्याप्त अपर्याप्त सब ले लिए। उसमें तो सूक्ष्म होते नहीं, प्रत्येक वाले तो बादर ही होते हैं, तो उसमें कैसा भंग होगा? पृथ्वी काय की, अपनी अपनी काय स्थिति, अपनी अपनी स्थिति करनी चाहिए। पृथ्वी काय इन जनरल में रहने का काल कितना है मालूम है? पृथ्वी काय इन जनरल हाँ, प्रत्येक साधारण सब मिलकर अकेले पृथ्वी का एक में रहा। मैं पृथ्वी का एक कह रही हूँ, वनस्पति का एक कहना, मैं वही भूल गई,
अनंत
काल, अनंत काल, अकेले वनस्पति का एक में रहने का भी अनंत काल, यहाँ तक समझ। और अकेले पृथ्वी का एक प्रत्येक शरीर में,
प्रत्येक शरीर में तो कर्म स्थिति था,
कर्म स्थिति मैं भूल से मैंने पृथ्वी का एक कहा, ये
वनस्पति
ये पृथ्वी का एक बैठा है मैं, फिर से पढ़ती हूँ मैं, अभी फिर दोबारा सुनो। वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर, वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर रहने क्या है, वो बादर है, पर बादर निगोद को छोड़ा है, एकाएक का एक भेद लिया। तो वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर में रहने का लगातार काल कितना होगा? कर्म स्थिति प्रमाण होगा। और निगोद में भी केवल निगोद में रहने का काल दाही कुजगल परावर्तन, अकेले बादर निगोद में रहने का काल कर्म स्थिति।
कर्म स्थिति वनस्पति प्रत्येक में तो वो बादर ही है ना,
वो बादर ही है, वो भी कर्म स्थिति होगा।
वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर
हाँ,
इसका उत्कृष्ट काल हमने संख्यात वर्ष बताया और आपने 70 कोड़ा कोड़ी बताई, एक ही होता है ना?
ना ना, प्रत्येक शरीर में पर्याप्तों में लेना पड़ेगा।
यहाँ वनस्पति का
प्रत्येक शरीर पर्याप्तों में, पर्याप्त अगर लेंगे, प्रत्येक शरीरों में अगर पर्याप्त अकेला लेंगे तो उसमें संख्या 1000 वर्ष होगा।
अच्छा,
और पर्याप्त अपर्याप्त दोनों लेंगे तो कर्म स्थिति हो जाएगा, है ना? ऐसा ही है ना? हाँ ऐसा ही है। क्योंकि वो काय स्थिति उतनी हो जाती है उसकी, प्रत्येक शरीर इन जनरल लिया में पर्याप्त अपर्याप्त दोनों को मिलकर, तो वो कर्म स्थिति प्रमाण हो जाता है।
और फिर प्रत्येक का संख्या बताता,
प्रत्येक में प्रत्येक में पर्याप्त लेंगे तो संख्या 1000 वर्ष। पर्याप्त लगी तो संख्या 1000। निगोद हाँ, अपनी अपनी स्थिति करनी चाहिए लिखा है ना, अकेले निगोद की स्थिति कितनी है? 2.5 पुद्गल परावर्तन निगोद की, और बादर निगोद की कर्म स्थिति है। बादर में कायिक आया तो अकेले बादर एक इंद्रिय आएगा इन जनरल सभी कायिकों को मिलकर, तो अंगुल का असंख्यात भाग होता है। एक सब अकेले काय, अकेला एक एक अलग से लेते हैं काय तो कर्म स्थिति होती है। हाँ, निगोद इन जनरल देखो, विशेषात पढ़ लेते हैं अभी यहाँ पर। पृथ्वी कायिक और जल कायिक जीवों का उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण है, जिसको हम काय स्थिति कहते हैं। इसी से इन जीवों में चार घाती कर्मों के जगन अनुभाग बंध का उत्कृष्ट अंतर असंख्यात लोक प्रमाण कहा है। इतनी विशेषता है कि काय स्थिति के प्रारंभ में और अंत में बादर पर्याप्त करा के,
यहाँ पर जो विशेषार्थ में बताया है
हाँ,
पृथ्वी का और जल का एक जीवों का उत्कृष्ट काल
हाँ, काल यानि काय स्थिति,
काय स्थिति
उत्कृष्ट काल करते हैं, उसी पर्याय में रहने का उत्कृष्ट काल, उसको हम नाम देते काय स्थिति। समझ में। एक होता है भव स्थिति ने, एक भव जो बड़े में बड़ा है उसको भव स्थिति कहते हैं। काय स्थिति, हाँ समझ में। देखो असंख्यात लोग इसी से इन जीवों में चार घाती कर्मों के जघन्य अनुभाग का उत्कृष्ट अंतर असंख्यात लोक प्रमाण कहा है। इतनी विशेषता है कि काय स्थिति के प्रारंभ में और अंत में बादर पर्याप्त करा के, क्योंकि उसका जघन्य बंद करने वाला बादर पर्याप्त ही होता है। तो काय स्थिति के शुरुआत में वो बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त हुआ, उसने जघन्य किया, और फिर बीच में सूक्ष्म बादर के भोग करते लास्ट में बादर पर्याप्त हुआ। इन कर्मों का जघन्य अनुभाग बंद करा कर यह अंतरकाल ले आवे। यहाँ शेष चार कर्मों के जघन्य अनुभाग बंद का अंतरकाल भी इसी प्रकार ले आवे, यानी वो करने वाला बादर पर्याप्त करता है जघन्य आयु का भी। शेष चार ने अगाती चारों में, पर यह केवल बादर पर्याप्त के ही प्राप्त होता है, यह नियम नहीं है। ऐसा क्यों लिखा? शेष चार कर्मों के जो, अच्छा 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 ये समझ में आई बात? नहीं समझी। शेष चार कर्म ने कौन से?
नाम पुत्र और आयु।
हाँ, उसका जघन्य कौन करेगा?
मध्यम परिणाम।
तो मध्यम परिणाम करेगा तो कौन करेगा? कोई भी करेगा, यानी उसको बादर पर्याप्त में जन्म लेने की कंडीशन नहीं है। यही यहाँ जो इनके विशेषार्थ से घटित होता है सूक्ष्म भी कर सकते हैं, पर्याप्त तो कोई भी कर सकता है। यानी जो असंख्यात लोग के लिए वो जो सूक्ष्म में जाने की बात की थी वो तो परिणाम लौट कर उसमें आते ही आते हैं, बस ये उसका कारण है। जहाँ एक इंद्रिय में अनंत काल रहता है वहाँ इतने काल के बाद लौट कर उसके जघन्य परिणाम हो गए ही, बस ये उसका अर्थ होता है। इसलिए क्या कहा? ये कंडीशन नहीं। कौन सी? बादर में जन्मने की कंडीशन नहीं। क्यों? मध्यम परिणाम कोई भी कर सकता है, यानी उसका काय स्थिति उतनी ही लेनी है, पर करने वाला कोई भी होगा जी। यानी वहाँ पहले भाव में और अंतिम भाव में उसको बादर पर्याप्त बनाने की जरूरत नहीं है। नहीं है यहाँ लिखा ना, पर यह केवल बादर पर्याप्त के ही प्राप्त होता है, यह नियम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मध्यम परिणाम में जघन्य होता है। अग्नि का एक और वायु का एक जीवों की उक्त प्रमाण काय स्थिति होने से, उनकी भी काय स्थिति कितनी है? असंख्यात लोग सबके लिए, केवल वनस्पति का एक में अनंत काल है। इनमें भी यह अंतर इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए। मात्र इन दोनों काय वाले जीवों में गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामित्व ज्ञानावरण के समान होने से, यानी सर्व विशुद्ध वाले के होता है। ऊपर गोत्र कर्म के लिए अन्य जीवों में क्या था? मध्यम परिणाम में था, और यहाँ सर्व विशुद्ध है। तो सर्व विशुद्ध दो ही समय तक हो सकता है, तो अजगन्य का अंतर दो समय होगा। इसका भंग ज्ञानावरण के समान कहा है। मैंने उसके लिए प्रारंभ में और अंत में बादर पर्याप्त कराना है और उसका जघन्य लाना है, और उसकी काय स्थिति भी उतनी है जैसे घाती कर्म में घटित किया वैसे यहाँ पर भी घटित होता है। और अजघन्य में अंतर है, अजघन्य का अंतर एक या दो समय होगा। और वेदनीय नाम और आयु के लिए, सर आयु को छोड़ो, वेदनीय और गोत्र के लिए, वेदनीय और नाम के लिए अजघन्य का अंतर चार समय हो सकता है। यहाँ अन्य जितने काय वाले जीव गिनाए हैं इनमें भी उनकी काय स्थिति को जानकर, अन्य काय वाले ने वनस्पति का एक प्रत्यक्ष शरीर लिए निगोद लिए, उक्त अंतरकाल ले आना चाहिए। कोई विशेषता न होने से यहाँ उनका अलग से निर्देश नहीं किया है, शेष कथन सुगम है। अब ये हो गई हमारी काय मार्गना त्रस्काय की बात पंचेंद्र के समान बता चुके थे। अब योग मार्गना देखते हैं। पांच मनोयोगी और पांच वचन योगी जीवों में। अब मनोयोगी की काय स्थिति कितनी है? अंतर मन से बोल रह सकता है, योग पलटता रहता है। परंतु यहाँ अभी मनोयोगी उसमें चार घाती का जगन्य कहाँ होगा? शपक में होगा। तो चार घाती कर्मों के जगन्य और अजगन्य अनुभाग बंध का अंतर काल नहीं है। ऐसे भी जो शपक में जगन्य होता है उसके जगन्य का तो अंतर नहीं होगा। तो जगन्य का अंतर नहीं है तो अजगन्य का भी अंतर नहीं होगा, क्योंकि हम देखते हैं ओघ में अजगन्य का अंतर था कि नहीं?
ओघ में था।
कब था? ग्यारहवें में था। ग्यारहवें, परंतु मनोयोग में रहते हुए भले वो ग्यारहवें में गया है, यानी मनोयोग के रहते हुए दसवें के अंत में था उपशम श्रेणी में। एक समय के लिए उसने बंद किया, वो अजगन्य ही था, फिर ग्यारहवें में गया। पर ग्यारहवें के एक अंतर्मूल काल में उसने मनोयोग वचन योग का योग कितने बार पलटा? एक ही योग के रहते हुए पूरा ग्यारहवा पार कर नीचे नहीं आता। आप कहेंगे मरकर देव में भेजो, पर देव में तो कारमान का योग या वैकृत मिश्र हो जाएगा, फिर वैकृत होगा, बाद में कभी जब मनोयोग होगा तो वो भी लगातार मनोयोग नहीं रहता। इसलिए ना जगन्य का अंतर है ना अजगन्य का अंतर, ऐसे वचन योग में। अब वेदनी आयु और नाम कर्म की बात करते हैं। उसका जगन्य कहाँ होता है? तो मध्यम परिणाम में होता है। तो जगन्य अनुभाग बंद का जगन्य और उत्कृष्ट अंतर्मूर्त कहा है, परंतु जगन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है। अंतर्मूर्त कैसे? मनोयोग के रहते हुए पहले समय में जगन्य किया और अंतिम समय में जगन्य किया। तो बीच मामला मनोयोग का जो काल है उसमें उसने जगन्य नहीं किया, जगन्य का अंतर अंतर्मूर्त हो गया। जगन्य अनुभाग बंध का अभी नेक्स्ट पेज 64 पेज पर जगन्य और लिखा है ना, तो जगन्य के बाद और के पहले अंतर एक समय लिखना। जगन्य अंतर एक समय, लास्ट टाइम हमने लिखवाया था। हाँ, जगन्य के बाद, हाँ 388 पेज वहाँ लिखा है। नहीं, वो ऊपर प्राकृत की बात में कहे 388 पर। लक्ष्मी आपने बराबर सुना? आपने लास्ट टाइम कुछ लिखा है? गलत हुआ। पहला शब्द है जगन्य, नहीं जगन्य अंतर एक समय, तीन शब्द लिखना है। जगन्य तो है ही, उसके बाद अंतर एक समय और बाकी लिखा है हुआ आगे का, और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है, वो तो लिखा है पुस्तक में। हाँ, अभी प्राकृत में चलो ऊपर की लाइन, नामा ज जह एग लिखो बीच में और उपकसंतो। हमने यहाँ 388 पेज का रेफरेंस लिख के रखा है लास्ट टाइम। हाँ, वो अंतर जगन्य का अंतर के प्ररूप में 388 में हमारी मार्गणा कौन सी वनयोगी की चल रही है ना? पांच मनोयोगी वचन योगी, और हम वेदिनी और नाम की बात देख रहे थे। आयु वेदिनी आयु और नाम, अब देखो यहाँ हमने लिखा है रेफरेंस फॉर पेज 64। हमने अलग अलग जगह लिखा है, देखो तीसरी लाइन में साता असाता दोनों लिए और अन्य भी जो प्रतिपक्षी प्रकृतियां ली हैं, उनका जगन्य अंतर एक समय उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त लिखा है। और नीचे आयु के लिए भी देखो, नीचे से चौथी लाइन आयु के लिए अलग है। यहाँ आयु की बात ही नहीं, वेदिनी और नाम की बात है। और अजगण्य का अंतर देखो, अजगण्य का एक समय से चार समय, वही यहाँ लेना है। अपने पेज पर आना, क्योंकि वहाँ बहुत सारी प्रकृति आपका घोटाला हो जाएगा। अब यहाँ क्या कहना चाहते फिर से देख, अब जो करेक्शन किया ना उसके साथ हम पीछे के पेज से पढ़ेंगे। वेदनी आयु और नाम की बात चल रही है, जगन्य अनुभाग बंध का, इसका जगन्य कहाँ होता है तो मध्यम परिणाम में। जगन्य अंतर एक समय है, एक समय के अंतर से फिर दोबारा जगन्य हो सकता है। उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त, क्योंकि मनोयोग का काल अंतर्मूर्त से ज्यादा नहीं है। अब अजगन्य अनुभाग बंध का, अजगन्य का अंतर कब होगा, जब वो जगन्य कर रहा होगा तब। अजगन्य अनुभाग बंध का जगन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर चार समय है, क्योंकि वेदनीय नाम और आयु का जगन्य अनुभाग बंध लगातार चार समय तक हो सकता है, इसलिए अजगन्य का अंतर चार समय बताया। अब मनोयोगी वचन योगी में गोत्र कर्म के जगन्य अनुभाग बंध का अंतरकाल नहीं है। मयंक भाई क्यों नहीं है, उसका स्वामित्व कौन है? गोत्र कर्म का जगन्य करने वाला स्वामित्व कौन है? नार की सातवें नरक का सम्यक सन्मुख, वो जगन्य करेगा ओग में तो उसका अंतर्मूर्त में दोबारा कर सकता है, परंतु सम्यक तो प्राप्त किया फिर मिथ्यात्व में अंतर्मूर्त रहा तो उसमें योग कितनी बार पलटेगा, इसलिए उसका अंतर नहीं हो सकता। हाँ, नीच गोत्र ही बांधता है, इसलिए वो जगन्य में जगन्य करेगा, क्योंकि अति विशुद्ध उसी समय है उसको, और मनोयोग के रहते हुए वो दोबारा नहीं करेगा, इसलिए अंतरकाल नहीं बोला, यानी उसी योग में दोबारा वो कार्य नहीं होगा। हाँ, सम्यक के समय, हाँ साथ में रखा ना रखे। देखो देखो, मनोयोग के रहते हुए फिर दोबारा वो सम्यक को प्राप्त करेगा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो सम्यक के सम्मुख था, समय दृष्टि हुआ तो समय दर्शन में वो अंतर्मूर्त रहेगा। उस अंतर्मूर्त में भी चौथे गुण स्थान में उसने योग का बहुत बार पलटा, क्योंकि योग का काल बहुत छोटा है, और फिर वो मिथ्यात्व में आया, मिथ्यात्व में भी उसको अंतर्मूर्त रहना और वहाँ पर भी योगों का पलटना होगा, तो एक ही बार का मनोयोग में ये सम्यक्त्व का अंतर्मूर्त मिथ्यात्व का अंतर्मूर्त घटित नहीं होता, यानी उसी योग के रहते हुए दोबारा सम्यक्त्व प्राप्त करने का कार्य नहीं बनेगा। ये सम्यक के सम्मुख वाला था। हाँ, यही बात कोई भी मनोयोग हो, कोई भी वचन हो, उसका कोई भी प्रकार हो, उसमें घटित हो जाती है। इसलिए क्या कहा, गोत्र कर्म के जगन्य अनुभाग बंध का अंतरकाल नहीं है। हमें तो देखना है कि मार्गणा कौन से, स्वामित्व कौन है। अजगन्य अनुभाग बंध का जगन्य और उत्कृष्ट अंतर एक समय है, क्योंकि वो तो जगन्य करने के पूर्व समय में अजगन्य था, सातवें नरक का नार की सम्यक्त्व के सम्मुख अवस्था है, अंतिम समय करण लब्धि का, तब उसने जगन्य किया। उसके पूर्व समय में क्या था, अजगन्य मनोयोग के चलते हुए, अब वो समय दृष्टि हुआ। गोत्र कर्म ही जनरल देखना है, निज गोत्र का नहीं देखना है, अकेले निज गोत्र का देखना होता तो उत्तर प्रकृति में वो बात घटित नहीं होती थी। अब यहाँ नीचे उसने सम्यक्त्व के सम्मुख अवस्था में सातवें नरक के नारकी ने निज गोत्र बांधा और समय दृष्टि होने पर उच्च गोत्र बांधा, पर वो गोत्र कर्म ही जनरल की बात चल रही है। वो भी क्या था, अजगन्य ही था, जगन्य नहीं था, वो उत्कृष्ट था कि नहीं उसकी बात नहीं, जगन्य में निज गोत्र ही है, पर अजगन्य में कौन सा लेंगे, नीच उच्च कुछ भी ले सकते हैं। नीच का भी अदरवाइज उसने अजगर नहीं कर रहा था, समय दृष्टि हुआ उच्च गोत्र बांध रहा था, वो गोत्र की अपेक्षा अजगर नहीं कहलाएगा, भले वो अनंत गुना अधिक वाला अनुभाग वाला है, फिर भी वो क्या कहेंगे, अजगर। समझ में आ रही बात, ये गोत्र कर्म का जघन्य एक समय के लिए हुआ, वो जघन्य हुआ उसके पहले क्या था, अजघन्य नीच गोत्र का ही था पर अजघन्य था, फिर जघन्य किया एक समय का अंतर दिया, फिर समय दृष्टि हुआ तो उच्च गोत्र बांधने का। हमें तो यहाँ मूल प्रकृति की बात है, यहाँ पर भी गोत्र कर्म बांध रहा था, वहां पर भी बांध रहा था, वहां जो बांध रहा था उसको क्या कहेंगे, अजघन्य कहेंगे, क्योंकि वो तो अनंत गुना अधिक अनुभाग वाला है, नीच और उच्च गोत्र के बीच में अनंत गुना का डिफरेंस है, पर वो कितना भी अधिक क्यों ना हो उसको अजघन्य ही नाम देंगे।
अभी विषय से थोड़ा सा दूसरा प्रश्न है,
हाँ, अन्य प्रश्न
फिर मैं भूल जाता हूँ इसलिए पूछूं। जो सातवें नरक का नारकी है वो वहां से मरकर संगी पंचेंद्रिय ही होगा?
बिल्कुल, कोई भी नारकी, सातवें की बात नहीं, नारकी मरकर संगी पंचेंद्रिय ही होता है।
अच्छा,
ऊपर के नरक के मनुष्य या तीरेंच होते हैं?
तो कोई जीव सातवें नरक से मरकर तीरेंच में आया तो वो अपर्याप्त हो सकता है?
ना ना, पर्याप्त में ही जन्मते हैं।
अच्छा, पर्याप्त में से फिर डायरेक्ट सातवें नरक में जा सकता है?
नहीं, और एक भव करना पड़ता है।
अच्छा,
क्योंकि वो जो गर्भज में आएगा, सातवें नरक का नारकी मरकर हिंस्र पशुओं में आएगा, जो सिंह वगैरह पांचवें नरक तक ही जा सकते, वो सातवें नरक में नहीं जा सकते। अभी वो जो पंचेंद्रिय तीरेंच बना था सिंह या कोई जो, वो फिर मत्स्य बनेगा या मनुष्य बनेगा और फिर वो सातवें नरक में जाएंगे।
कोई नहीं जा सकते ऐसा,
क्योंकि वज्र ऋषभ नाराज सहनन वाले ही जाएंगे।
मुझे ये पूछना है कि सातवें नरक से निकलकर सातवें नरक से निकलकर दोबारा सातवें नरक में आने का जघन्य अंतर कितना होगा?
अंतर उसको हम अंतर्मूर्त कह सकते हैं, क्योंकि पर्याप्त पंचेंद्रिय का भी अंतर्मूर्त की आयु बांध सकता है, और उसने कोई मत्स्य की भी आयु बांधी वो भी अंतर्मूर्त की हो सकती है, वो तो सम्मूर्छन होते हैं, वो तो सम्मूर्छन में मरकर नरक
में हो सकता है। सम्मूर्छन जो है तो
सम्मूर्छन तीर्यंच सम्मूर्छन वाले पर्याप्त होते हैं, मत्स्य वगैरह जो है
कोई सातवें नरक से निकला इधर का आयु बांधे तीर्यंच की, तो वो उसका मिनिमम कितने काल में वापस जाएंगे?
वही अंतर्मूर्त था, परंतु अंतर्मूर्त में दो भाव होगा, ये कहना चाहती हूँ।
तो एक पर्याप्त कर लेगा और एक सम्मूर्छन का,
वो भी सम्मूर्छन का पर्याप्त का ही है। सम्मूर्छन जीव पर्याप्त भी होते हैं अपर्याप्त भी होते हैं।
सातवें नरक से कोई भी जीव गर्भज में ही आएगा?
हाँ, बराबर। वो गर्भज का एक अंतर्मूर्त वाला एक भव किया, उसने अभी तीर्यंच का एक भव किया, कौन सा? सम्मूर्छन वाला, इसलिए सम्मूर्छन वाला है वो, तो क्योंकि मनुष्य होगा तो देखो देखो मनुष्य, क्योंकि मनुष्य जो है ना सातवें नरक में जाने योग्य तो उसके संक्लेश होने चाहिए, तो मनुष्य तो गर्भ में ही कितना चला जाएगा उसके, मैंने पर्याप्त तो भी हुआ फिर भी सातवें नरक के योग्य परिणाम तो इमीडिएट नहीं होंगे, तो सम्मूर्छन वाला छोटा भाव कर सकता है वो, या कदली घात से भी हो सकता है, सम्मूर्छन का बंधन किया और कदली घात से मरकर गया नरक में, ये हो सकता है वहां पर।
और वो जो हिंसक पशु बना फिर वो अगले भाव में मनुष्य की आयु बांध के मोक्ष जा सकता है?
हाँ, जा सकता है।
कल वो तीरेंच में कुछ
आया, उस तीरेंच में उसको समय दर्शन नहीं होगा,
उसमें नहीं होगा, अगर वो नेक्स्ट जन्म
अभी उसके कुछ भी कर सकता है, वो पंचेंद्रिय तीरेंच है, परंतु उस भव में समय दर्शन नहीं हुआ, अभी वो और जो दूसरा कोई भव लेगा वहां तो जा सकता है। हमने वो क्षपित कर्मांशिक में गुणित कर्मांशिक में देखा था ना, गुणित कर्मांशिक जीव जो मोक्ष जाने वाला है सातवें नरक से अति संक्लेश में निकला हुआ है, अब वो डायरेक्ट मनुष्य होकर जाएगा नहीं, तो बीच में एक अंतर्मूर्त का भोग तो करना ही पड़ेगा उसको, इस तरह यानी कितने नियम है अलग अलग।
तो हमने भी इसमें कितने किए होंगे अंतर में वापस आके नरक के आए
बार। वही तो लगातार जाने के कितने बार होते हैं ना, ऐसा है ना, यानी पहले नरक से निकले वाला कितने बार लगातार ऐसा जा सकता है, इस तरह से 8 बार 7 बार 6 बार नीचे नीचे नरक में
कम बार।
हाँ कम बार, सातवें नरक से भी 2 बार जा सकता है, पर वो बीच में 2 भव करके 2 बार ऐसा लेना,
लगातार
2 बार
ऐसे तो नहीं के बराबर हो,
33 सागर के 2 बार
नहीं नहीं जो अंतर मूलक का
वो नहीं के बराबर ही हो गए। यानी वो नहीं गिनो तो 66 सागर तक वो सातवें नरक का सब आते हैं, सब योग्य परिणाम करके। देखो अभी यहाँ हम पढ़ रहे थे विशेषात पढ़ रहे थे, पढ़ेंगे अभी गोत्र कर्म का ख्याल में है ना। जघन्य का अंतर नहीं है क्योंकि मनोयोग छोटा काल है और अजघन्य का एक समय के लिए अंतर है। विशेषार्थ 5 मनोयोगी और 5 वचन योगी जीवों में 4 घाती कर्मों का जघन्य अनुभाग बंधक शपक श्रेणी में होता है तथा उपशम श्रेणी में योग परिवर्तन हो जाता है। अकेले पूरी श्रेणी की बात नहीं, अकेला 11वां भी गुणस्थान लेंगे तो योग का परिवर्तन बहुत बार होता है। उसी योग के रहते हुए फिर दोबारा 11वां पार करके नीचे आवे फिर बंद के ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ इनके जघन्य और अजघन्य अनुभाग बंध के अंतर काल का निषेध किया है। उपशम श्रेणी में लिए था 11वें में भी। वेदनीय और नाम कर्म का ये 2 कर्मों को अलग लिया। जघन्य अनुभाग बंध समय दृष्टि या मिथ्या दृष्टि परिवर्तमान मध्यम परिणाम वाले जीव के होता है और हमने देखा था वो जघन्य करने वाला 1 या 4 समय तक करता है तथा तो उसने क्या किया मनोयोग के पहले समय में जघन्य किया अंतिम समय में जघन्य किया तो जघन्य का उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त हुआ। और जघन्य का अंतर कब होगा जब वो जघन्य कर रहा है तो कितना होगा 1 समय या 4 समय तथा आयु कर्म का जघन्य अनुभाग बंध अन्यतर अपर्याप्त निवृत्ति से निवृत्तमान ये कंडीशन है उसकी मध्यम परिणाम वाले जीव के होता है। यहाँ अपर्याप्त निवृत्ति क्यों लिखा है मनोयोगी में अपर्याप्त निवृत्ति क्यों लिखा, पर्याप्त निवृत्ति ही लिखा है क्योंकि ये तो पर्याप्त होने पर ही तो पता नहीं मगर जो कुछ है चलो आगे बढ़ते हैं। मध्यम परिणाम में उसके आयु का बंध जघन्य होता है। स्वामी निकालो मनोयोगी में स्वामित्व जघन्य का स्वामित्व यानी वहां क्या शब्द डाला है वो देखेंगे ना। योगी आरक व्यतिरिक औदारिक औदारिक मिश्र मनोयोगी की बात ये ओह के समान थी क्या, ओह के समान है 18 पेज पर 18 आप कौन सा ले रहे
36
में क्या है काल नहीं स्वामी जघन्य अपर्याप्त निवृत्ति से निवृत्तमान ही बताया है। इसी प्रकार रोग के समान पंचेंद्रिय वगैरह वगैरह जीवन के जाना था। वो तो हमने वहाँ लिखा था लब्धि अपर्याप्त 5 मनोयोगी वचन योगी में कैसे होगा वो यानी क्वेरी वो घटित नहीं होगा क्योंकि बाकी सब जो है ना पंचेंद्रिय पर्याप्त त्रस त्रस पर्याप्त वगैरह लिए पर्याप्त जीवों में लब्धि अपर्याप्त कैसे हो गए। मैंने 18 पेज निकाला है 18 यानी आयु के लिए ओघ में तो जघन्य अपर्याप्त तो निवृत्ति से निवृत्तमान था, और ऐसा ही पांच मनोयोगी वचन योगी में देखा। अभी इसके लिए फिर उत्तर प्रकृति में स्वामित्व देख लो।
उत्तर प्रकृति में स्वामित्व,
हाँ, मनोयोगी में। अभी हमने अंतर बात देखी थी ना काल के पहले, 221 के आजू बाजू में कहीं होगा, जघन्य के उत्कृष्ट है। जगन्य की बात है, पेज नंबर मुझे मिला 221 उदारिक मिश्र है। मनोयोगी की बात कहाँ है? जगन्य का प्रकरण 212 से शुरू हुआ था। एक मिनट, आयु की बात कहाँ आई? आयु उसमें मिला आपको मनोयोगी वचन योगी?
221 पे है।
221 पर
453 का पॉइंट,
453 वही जगन्य अपर्याप्त निवृत्ति से निवृत्तमान ही बताया था। यानी जो हमने लब्धि पर्याप्त अर्थ लगाए वो कुछ अलग है।
इसका 213 पे है मनुष्य देगा, ये सब अलग अलग आएगा।
नहीं नहीं वो तो ठीक है, पर वो शब्द तो वही आता है ना। ठीक, अभी आना अपने पेज पर। पेज हमारा चल रहा था 64, इसलिए उन्होंने ओक के समान ऐसा ही डाला है। यहाँ पर विशेषार्थ की 1, 2, 3, 4, 5वीं लाइन तथा आयु कर्म का जघन्य अनुभाग बंध अन्यतर अपर्याप्त निवृत्ति से निवृत्तमान मध्यम परिणाम वाले जीव के होता है। ये मध्यम परिणाम में होगा मनोयोग में। उक्त योगों में यह अवस्था अंतर्मूर्त बाद हो सकती है ना, एक समय बाद हो सकती है। जगन्य का अंतर एक समय हो सकता है ना, अंतर्मुद रुकने की क्या आवश्यकता थी? तो उक्त योगों में मनोयोग हो वचन योग कहीं पर भी हो, मध्यम परिणाम लौट कर एक समय में होते हैं ना, पर यह अवस्था अंतर्मुद काट कर एक समय लिखना। एक समय बाद हो सकती है, इसलिए इनमें इन कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय कहा। उसका उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त था ना, मूल में उन्होंने जघन्य और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त कह दिया था, इसलिए घोटाला हुआ उनका।
हाँ,
परंतु उन्होंने ओरिजिनल में प्राकृत में उन्होंने जघन्य और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मुख कहा, इसलिए उन्हें विशेषार्थ में ऐसा लिख दिया।
हाँ,
अंतर्मुख काट कर एक समय लिखो दोनों ही जगह। उक्त योगों में यह अवस्था एक समय बाद हो सकती है, और इसके लिए हमने पेज नंबर 388 का रेफरेंस लिखा था, वहाँ देख कर ही हमने ये बात यहाँ कन्फर्म में लिखी थी। वहाँ आयु की भी बात और अन्य जो साता असाता वगैरह की भी बात वहाँ लिखी थी। एक समय से अंतर्मुख मिला था ना आपको, आयु के लिए भी एक समय से अंतर्मुख बताया था, जगन्य का अंतर। और अजगन्य के लिए एक समय से चार समय हुआ था। समझ में आई बात ये? 388 पर रेफरेंस तो हमने देखा था उसको। अब आगे बढ़ते हैं। गोत्र कर्म का विशेषार्थ में नीचे से चौथी लाइन, गोत्र कर्म का जघन्य अनुभाग बंध सातवीं पृथ्वी में सम्यक्त्व के अभिमुख हुए जीव के होता है। परीन योगों में एक बार गोत्र कर्म का जघन्य अनुभाग बंध होने पर उसी योग के रहते हुए दूसरी बार वह अवस्था प्राप्त नहीं होती। दूसरी बार कब हो गई? फिर मिथ्यात्व में गया और फिर सम्यक्त्व प्राप्त किया तब। इसलिए इन योगों में गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का निषेध किया है। शेष कथन सुगम है। ओग की अपेक्षा जब हम पूछेंगे आपको गोत्र कर्म का जघन्य, उसका मिनिमम अंतर कितना होगा जघन्य का?
जघन्य का समय ना जो सातवें नाल के करेगा
अंतर,
एक समय से उसको मध्यम परिणाम
देखो। दो गोत्र का जघन्य का सम्यक्त्व के सन्मुख किया, दोबारा उसको कब कितने काल के बाद?
दो समय के,
दो समय भी फिर मिथ्यात्व में आएगा फिर समय को प्राप्त करेगा?
नहीं करेगा।
कल थी नहीं बात ये ओग में लेना है, ओग में ले लो या सातवें नरक में ले लो ना,
तो अंतर्मुख वापस सम्यक्त्व में से उसमें
वही तो अंतर्मुख लेना है वहाँ पर। गोत्र का जगन्य कब करेगा? दोबारा समय तो प्राप्त करेगा तो दोबारा समय को कितने काल में करेगा? तो अंतर्मुख में करेगा। कल मैंने ये भी बात बताई थी कि इसे उपशम समय तो की जरूरत नहीं है। पहली बार उपशम ही किया, दूसरी बार वेदक किया तो भी अंतर घटित होता है। कल ही हमने ये चर्चा की अंतर्मुख है ना। अर्धपुद्गल परावर्तन कुछ कम हो तो ओघ में होगा और सातवें ही नरक में लगाना है
तो कुछ कम
तेज। हाँ, तो यहाँ क्या लिया है? एक ही योग के रहते हुए ये संभव नहीं, इसलिए उसको अंतर नहीं कह देंगे। परंतु अजगण्य का अंतर एक समय तो घटित हो ही जाएगा। समय तो प्राप्त किया और मनोयोग चलता रहा, जो कोई अनुभाग था वो अजगर नहीं कहलाएगा। शेष कथन सुगम है। ये तो हो गया मनोयोग वचन योग हो गए। का योगी जीवों में चार घाती कर्मों के जघन्य और अजघन्य अनुभाग बंध का अंतर काल ओघ के समान है। यानी जघन्य का अंतर नहीं होगा क्योंकि क्षपक में होता है, अजघन्य का अंतर कब कैसे होगा? ग्यारहवें गुणस्थान में होगा। परंतु हाँ, वो काय योग के रहते हुए देव में मरकर गया, इसलिए एक समय से अंतर्मुक्त होगा। मनोयोगी में नहीं लिया था, परंतु वो मनोयोग के मनोयोग में रहते हुए उसके उसी भाव में रहना है। काय योगी में मरकर भी गया तो काय योग, यहाँ औदारिक काय योग था, वहाँ तो वैकृत मिश्र हुआ तो अंतर तो घटित हो ही गया। यहाँ बंद नहीं था फिर बंद शुरू हुआ। यानी अजघन्य का एक समय से अंतर्मुक्त होगा और जघन्य का तो अंतर नहीं था। अब वेदनी और नाम कर्म का भंग ओह के समान है, इसका मध्यम परिणाम में जघन्य होता है। तो जघन्य अंतर कितना? एक समय होगा। उत्कृष्ट अंतर असंख्यात लोक होगा, क्योंकि असंख्यात लोक के बाद फिर लौटकर उसी परिणाम में आ जाएगा वो। आयु कर्म का भंग एक इंद्रियों के समान है, क्योंकि लगातार कायुग में रहने का काल है ना उसका, तो आयु कर्म का भंग एक इंद्रियों के समान है। यानी वो जघन्य के लिए वही है, एक समय से असंख्यात लोक। आयु के लिए भी जघन्य बंध असंख्यात लोक के बाद लौटकर करेगा ही करेगा। और अजघन्य का अंतर आयु के अजघन्य का अंतर सायुग में रहते हुए, ओग में तो हमने साधिक तीर्थ सागर लिया था, का योग है ना, औदारिक का योग, औदारिक मिश्र दोनों ले सकते हैं, तो दो पृथ्वी का एक के भाव लेना, साधिक 22,000 वर्ष का योग लगातार चालू रहा उसका, यानी जगन्य का एक समय से असंख्यात लोग। अरे देवों में तो काय योग, वचन योग, मनोयोग तीनों देव की शुरुआती में काय योग था,
वचन योग और
जहाँ त्रियोगी है वहाँ योग का काल अंतर्मुख। हाँ साधिक भाई से ये आयु की बात हो रही, गोत्र कर्म के जगन्य अनुभाग बंध का अंतरकाल नहीं है। जैसे हमने देखा था मनोयोग वचन योग में अंतरकाल नहीं है, क्योंकि काय योग में रहते हुए जगन्य किसके है तो नारकी के होता है, और उसका भी काय योग पलटेगा, मनोयोग वचन योग हो जाएगा, इसलिए अंतर नहीं बताया। और जगन्य अनुभाग बंध का अंतरकाल योग के समान है, वे यहाँ उपशम श्रेणी में 11वें में गया, योग चालू हो, का योग चालू था, का योग में 10वें गुणस्थान के अंत में उसने अजगन्य बंध किया, 11वें में गया, एक समय बंध नहीं था, देव में गया तो बंध हुआ, तो अजगन्य का एक समय हुआ। उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त, क्योंकि का योग के रहते हुए का योग अंतर्मूर्त तक रहता है, तो का योग समाप्त होने के पहले पहले मरकर देव में गया और वहाँ उसने बंध किया, तो एक समय से अंतर्मूर्त हो जाएगा। विशेषार्थ, काय योग के रहते हुए गोत्र कर्म का जगन्य अनुभाग बंध दो बार संभव नहीं है, जैसे मनोयोग में नहीं संभव ऐसे यहाँ पर है, इसलिए यहाँ गोत्र कर्म के जगन्य अनुभाग बंध का निषेध किया है। शेष कथन सुगम है, क्योंकि पहले उसका विचार कर आए हैं, पर वेदिनीय नाम का तो हो सकता है जगन्य, वो मध्यम परिणाम में होता है, इसलिए उसका अंतर वो असंख्यात लोक प्रमाण के दिया था, आयु के लिए भी ऐसा ही था। अभी नीचे औदारिक कायोगी जीवन, अब यहाँ कंडीशन और कायोगी कहते हैं तो देव में भी जा सकता था, औदारिक का योगी नहीं, हाँ तो वो तो उपशम श्रेणी वाला भी नहीं ले सकते, क्योंकि उसके औदारिक का योग पलट कर मनोयोग वचन योग हो जाते हैं वहाँ पर भी। तो देखो औदारिक का योगी जीवों में चार घाती कर्मों के जगन्य का अंतर तो होता ही नहीं, क्योंकि शपक के अंतिम में होता है, और जगन्य का भी अंतर नहीं हुआ, अकेला का योग था तो हमने अंतर घटित किया, मनोयोग में वचन योग में और औदारिक का योग में अंतर नहीं होगा, अंतरकाल नहीं है। वेदनी और नाम कर्म के जगन्य अनुभाग बंध का जगन्य अंतर एक समय है, और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 22,000 वर्ष है, क्योंकि औदारिक का योग लगातार चलता रहे तो पृथ्वी का एक का एक भाव 22,000 वर्ष का, तो उसमें शुरुआत में औदारिक मिश्र था और फिर अंतर्मुख के बाद औदारिक का योग चालू हो गया, इसलिए कुछ कम 22,000 वर्ष, उसमें शुरुआत में उसने जगन्य किया, अंत में जगन्य किया। अजगन्य अनुभाग बंध का जगन्य अंतर एक समय, उत्कृष्ट अंतर चार समय, जब वो जगन्य कर रहा है तब अजगन्य का अंतर हो जाएगा। यहाँ पर भी हम उपशम श्रेणी में नहीं ले सकते, क्योंकि मरकर देव में जाएगा तो कारमान और वैकृत मिश्र हो जाएगा, औदारिक का योग नहीं रहेगा, और लौट कर नीचे आते आते तो योग कितने बार पलटेगा। आयु कर्म के जघन्य और अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है, उत्कृष्ट अंतर साधिक 7,000 वर्ष है, क्योंकि पृथ्वी का एक आयु का जघन्य करेगा तो वो तो एक ही भाव में करना है ना, अजगन्य भी एक भाव में करना है, क्योंकि दूसरा कहीं पर भी भाव लेता है तो बीच में औदारिक मिश्र आने वाला है, इसलिए पृथ्वी का एक भाव लेना और उसका वन थर्ड यानी साधिक 7,000 वर्ष। गोत्र कर्म के। अब औदारिक का योग में गोत्र कर्म का जघन्य लेना है, किसको लेना है? लक्ष्मी वो नारकी को लेना क्यों?
अग्नि का।
तो गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 3000 वर्ष है, क्योंकि उसका भी औदारिक वायु कायिक का एक भव, उसमें भी शुरुआत में औदारिक मिश्र है और बाद में औदारिक काल है, इसलिए पर्याप्त होने पर का काल है, तो कुछ कम 3000 वर्ष। वो बादर वायु का एक पर्याप्त सर्व विशुद्ध लेना, शुरुआत में उसने एक बार विशुद्ध में जघन्य बंध किया, अंत में फिर किया। और जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय, उत्कृष्ट अंतर दो समय, जहाँ सर्व विशुद्ध में जघन्य होता है वहाँ 2 समय तक लगातार हो सकता है। अब औदारिक मिश्र का योगी जीवों में, औदारिक क्या हो गया, औदारिक मिश्र में लेना। तो मेरा ये प्रश्न है, औदारिक मिश्र में 4 घाते का जघन्य कौन करेगा? औदारिक मिश्र का योग में 4 घाती कर्मों का जघन्य अनुभाग बंध कौन करेगा? समय दृष्टि। और वो कब? शरीर पर्याप्ति की पूर्व समय में। तो जघन्य का अंतर होगा क्या?
नहीं होगा।
जघन्य का नहीं होगा तो अजघन्य का कैसे होगा? सामने बात देखो, अभी यहाँ क्या कहते देखेंगे। औदारिक मिश्र का योगी जीवों में 5 कर्मों के, 5 कर्म कौन से लिए?
4 घाती
लिए और गोत्र भी लिया। गोत्र का भी कौन करेगा? बादर वायु कायिक या अग्नि कायिक, जो पर्याप्त होने जा रहा है वो शरीर पर्याप्ति के पूर्व का समय में। जैसे यहाँ पर हमने 4 घाती के लिए लिया, सम्यक दृष्टि को लिया सर्व विशुद्ध, और वहाँ वैसे अग्नि कायिक वायु कायिक सर्व विशुद्ध लेना है, वो गोत्र का जघन्य करेगा। 5 कर्म में 4 घाती और गोत्र लेना, समझ में आई बात?
स्वामी अलग है ना,
स्वामी अलग है। हाँ, 4 घाती के लिए समय दृष्टि लिया, औदारिक मिश्र का योगी ने समय दर्शन के साथ मनुष्य में आया हुआ है, गोत्र के लिए अग्नि का एक वायु का एक लिया, अने समय तदनंतर समय में पर्याप्त होगा इसलिए अंतर नहीं बताया, क्योंकि उसका औदारिक मिश्र नहीं रहेगा। फिर वेदनीय आयु और नाम कर्म का भंग अपर्याप्तकों के समान है, यानी ये कौन सा है? औदारिक मिश्र का योग है। वेदनीय आयु और नाम का वो तो उसमें भी कभी भी उसका जघन्य मध्यम परिणाम में होता है ना, कहीं पर भी उसका जघन्य होगा। तो जघन्य का उत्कृष्ट अंतर कितना होगा? अंतर में एक समय से अंतर में, और अजघन्य का एक समय से 4 समय जब वो जघन्य कर रहा है, क्योंकि बीच में कहीं पर भी उसका जघन्य हो सकता है। सर्व विशुद्ध वाली होना तो अंतिम समय में लेना था। अब आयु के लिए कैसे होगा? अपर्याप्त अवस्था में आयु कौन बांधेगा? लब्धि अपर्याप्त भी बांधेगा, वो जघन्य आयु बांधेगा। तो आयु बंध के काल में एक समय के लिए अंतर हो सकता है, या अंतर्मूर्त का अंतर हो सकता है, जघन्य का भी और अजघन्य का भी। और जघन्य में 2 भव लेना, और जघन्य आयु के लिए उसके भी 2 भव ले सकते हैं, परंतु उसका अंतर अंतर्मूर्त ही, मैक्सिमम अंतर अंतर्मूर्त होगा
दोनों का ना, जघन्य और अजघन्य।
हाँ, तो अपर्याप्तों के समान उन्होंने बता दिया, अपर्याप्तों को भी वो अंतर्मूर्त का ही काल था उसका। इसी प्रकार वैकृत मिश्र का योगी और आहारक मिश्र का योगी जीवों में जानना चाहिए, इतनी विशेषता है कि वैकृत मिश्र का योगी जीवों में आयु कर्म का अंतरकाल नहीं, वहाँ आयु बनती नहीं है, पर औदारिक मिश्र में आयु बनती है लब्धि अपर्याप्तकों की, और आहारक मिश्र में भी आयु का बंध महाबंध में स्वीकार है, अन्य किसी पुस्तकों में स्वीकार नहीं है। वहाँ पर यही रुकेंगे हम, विशेषांक कल पढ़ेंगे। चावाणी के ज्ञान से सूझे लो पालो, सनम सदा देत हूँ।